तो अगली सूरत स्वात। हरूफ़ मुक़त्तात के नामों पे सूरतों में से एक सूरत वन वर्ड यानी एक क़ाफ़ आएगी आगे सूरत 26वें पारे में, 26 पारे में, और इसी तरह सूरत नून 29वें पारे में है, और यहाँ क्या है स्वात, 88 आयात हैं इसकी। टॉपिक इसका शुरू की आयात का अना परस्ती को छोड़ दो, 1 से 16। अल्लाह के नबी सल्लम ने जब आपको अल्लाह ने हुक्म दिया कि वानज़िर अशीरतक अलअक़रबीन के अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाइए, दावत दीजिए दीन की, तो आपने एक बहुत अच्छी दावत का अहतमाम किया, खाने पे बुलाया, और बाद में जब आपने लोगों को दावत दीन दी तो जो बड़े बड़े सरदार थे या जो आपके चचा और इस तरह के जो बुजुर्गान थे उन्होंने जो बॉडी रिएक्शन शो किया ना वो इन आयात में, वन तलकल मलउ मिनहुम अनिमशु वसबिरु अला आलिहतिकुम इन खाजा इन हाजा लशयुन युराद, आयत 6 में आप ये जुमला ढूंढ लीजिए। कहने लगे चलो चलो उठो, ये क्या बातें हैं, ये तो हमें कोई और ही बातों में लगा रहे हैं। यानी उनको इतना बुरा लगा नबी का दावत देना कि ये क्या बात है, जिसलिए बुलाया था हमें कि हम अपने इलाहों को छोड़ दें। अल्लाह ताला को उनकी ये बात इतनी बुरी लगी कि उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ और उनके वर्ड्स के साथ इधर पेश कर दिया। वजह क्या थी, अना थी। याद रखिए कि जो भी जो काम कर रहा होता है ना वो उसको ठीक समझ के ही कर रहा होता है, तो इसी वजह से फिर अल्लाह ताला ने इधर ये बात दी। और उसके बाद फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला के फजल का तस्करा है आयत 17 से 26 में, इस बिरला मा यकूलून। असल में अल्लाह के नबी को तसलियाँ दी जा रही हैं, आप पे इतनी बातें छांटते हैं, आप सब्र कीजिए और जिक्र कीजिए हमारे बंदे दाऊद का जो हाथों वाले थे और अवाब भी थे। अवाब कौन होता है, जिसका दिल बार बार अल्लाह की तरफ पलटे। आप देखिए कि आप कहीं जाएं और आपने कभी उनके घर का वाईफाई यूज़ किया हो, थोड़ी देर में आपका फ़ोन उनके नेट से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा कभी नेट ना मिले ना तो वो सिग्नल लेने के लिए घूमता रहता है, रनिंग रनिंग। हाँ ये अवाबियत है, बंदा थोड़ी थोड़ी देर बाद अल्लाह की तरफ जाए, घूमे देखे, उसका दिल नहीं लगता, वो मिस करता है। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे के बगैर नहीं रहती ना, या आपको जिससे भी मोहब्बत होगी आपका दिल बार बार उसकी तरफ जाएगा। तो हज़रत दाऊद दौलतमंद भी थे, नबी भी थे, लेकिन दिल उनका अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ था। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें भी ऐसा ही बना दे कि हमारा दिल अल्लाह की तरफ रहे। और फिर इसके बाद आप देखिए कि एक वाक़या बयान करके अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बताकर अमली तौर पे समझाकर सिखाई जाती हैं। तो दुम्बियों का वाक़या पेश आया, हज़रत दाऊद को अपनी कोई गलती याद आ गई, एहसास भी हुआ और इस्तग़फ़ार करते हुए झुक गए। तो किसी की गलती देखकर अपनी गलती को जान जाना और उसकी इसलाह कर लेना, इसको हालात और वाक़या से मिलने वाली रहनुमाई कहते हैं। जो पीछे हम पढ़ कर आए ना हिदायत बयानी, तो ये हिदायत बयानी थी। अक्सर आपके साथ भी ऐसे ही होगा, कोई बात आपके साथ घर में हुई और आपने कोई कमी बेशी की, आप स्कूल जाएंगे तो रास्ते में या वहाँ जाकर कोई ऐसी बात आएगी आप कहेंगे आज की तो सारी बात ही मेरे ऊपर थी। ये है हिदायत बयानी। फिर इसके बाद नेकी करने वाले और बुराई करने वाले बराबर नहीं है, ये मैसेज है आयत 27 से 29 का। यानी ये दो मुख्तलिफ कल्चर हैं, दो मुख्तलिफ लोग हैं, और मकसद हयात बता दिया गया कि बेमकसद तो तुम पैदल नहीं किए गए। वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफरू। ये जुमला नोट कीजिएगा, ये तो कुफार का तरीका है, वो कहते हैं मौज करो मस्ती करो, अल्लाह कह रहे नहीं, क्या हम जन्नती और जहन्नमियों को आमाल करने और ना करने वालों को बराबर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, हर एक को अपने आमाल की जजा या सज़ा मिलेगी। फिर आगे हज़रत सुलेमान की बेशबहा नेमतों का तस्करा है आयत 30 से 40 में, वहबना अली दाऊद सुलेमान नेम अलब्द। ये लफ्ज़ नेम अलब्द कितना प्यारा लग रहा है। हज़रत दाऊद और सुलेमान के जो क़स्से हैं ना वो हमें ये बताते हैं कि दौलत भी हो अगर दुनिया की तो बंदा कभी भी नहीं बहकता अगर उसका दिल अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हो और फिर वो उससे भरपूर फ़ायदा उठाए। यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी एक क़स्सा है जिससे हमें भी ये बातें सिखाई गई हैं कि अगर कोई चीज़ इबादत में खलल डाल दे, आपके अल्लाह के ताल्लुक़ को कमज़ोर कर दे, तो उसको अपने से दूर कर देना चाहिए, वरना नेमतें फितना बन जाती हैं। फिर आके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश के ख़ात्मे की बात है, 41 से 44 में अल्लाह ताला ने इनको बीमारी में जब आजमाया, तवील बीमारी थी, अल्लाह के रहमत से सब्र किया इन्होंने, कोई बेसब्रापन नहीं किया, और एक दिन आया कि बीमारी ख़त्म हो गई। फिर अल्लाह ने जिस्म पहले से अच्छा कर दिया, जवानी भी कर दे दी, बच्चे भी दे दिए, बीवी को भी जवान कर दिया। अल्लाह के रस्तों में सब्र करने वालों को ऐसा ही तोहफ़ा मिलता है। अब ज़िक्र अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में 45 से 48 में कुछ और अम्बिया कराम का तذکرہ करके इस मौजू को रैप अप किया जा रहा है। वस्कुर इबादना, हमारे उन बंदों का तذکرہ कीजिए जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब थे, हाथों वाले थे और आँखों वाले थे, यानी समझ बूझ भी रखते थे। इन नाखलस ना हम भी खाली सते जिक्रदार, इसको हाईलाइट कर लें। अम्बिया कराम की कॉमन हैबिट क्या थी कि आखरत की याद के लिए वो खालिस थे। आज हम भी करते हैं आखरत को याद, लेकिन खालिस नहीं होते। हमें लगता नहीं देखना, कुछ ना कुछ ये होगा और वो होगा, और वो चुने हुए बंदे थे। आगे 49 से 54 में मुत्तकियों का उम्दा ठिकाना जन्नत, ये बताकर आपको मुझे भी शौक दिलाया गया कि हम भी ज़रा सा अपने आप को देखें, क्या हम इस जन्नत की तलब भी रखते हैं कि नहीं। हाजा जिक्र, ये कुरान, ये जिक्र, और मुत्तकियों के लिए बड़ा अच्छा इंजाम है। वो हम जन्नत अदन जिसके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे, तकिया लगाए बैठे होंगे, जो मंगवाएंगे फलों में से उनको मिल भी जाएगा और पीने की चीज़ें भी, और उनके पास निगाहें झुकाई हुई ख़वातीन। यानी दुनिया में जिन चीज़ों को हराम समझते हुए छोड़ा, जन्नत में उनको हलाल में मिल गया। और साथ ही कह दिया, हाज़ा मा तूअदून लियौमिल हिसाब, ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। इन हाज़ला रिज़्क़ुना, ये तो हमारा रिज़्क़ है। मा लहू मिन नफाद, अब ये ख़त्म थोड़ी होना है, दुनिया तो आई थी और चली गई। यानी आप देखिए इन आयतों को पढ़कर कितना मोटिवेशन मिलता है कि 4 दिन मेहनत कर लें, गुनाहों से बच जाएं, ताकि वहाँ नेमतों को पा लें। इसके बाद तस्वीर का दूसरा रुख है जहन्नमियों के झगड़े, 55 से 64 में, कि जहन्नम में जो बहुत सारे और मसाइल होंगे ना, उसमें एक बड़ा मसला झगड़ा है। दुनिया में भी आप देखिए बीमारी, सेहत, गुर्बत, दौलत मिलजुल के कट जाती है। घर वालों में इतनी मोहब्बत और प्यार होता है कि वो दुख सुख के साझी होते हैं, लेकिन जिस घर में झगड़े शुरू हो जाएं, वहाँ से बरकत उठ जाती है। तो जहन्नमियों में झगड़ों की बातें करके बता दिया गया कि जो लोग गलत कामों पे इकट्ठे होंगे, वो वहाँ जाकर भी एक दूसरे से झगड़े करेंगे। और फिर आगे 65 से 70 में बंदगी की शान, कुल इन्नमा अना मुनज़िर, देखिए कितना प्यारा अंदाज़ है। आप इनको कह दें, मैं तो डराने वाला हूँ, इंतज़ार करने वाला हूँ, वार्नर हूँ। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल कहार, बस कोई और मेरा तो इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के, जो वाहिद भी और कहार भी है, आसमान और ज़मीन का रब है, और जो इनके बीच है उसका भी, और गालिब भी है और बख्शने वाला है। यानी अल्लाह सुबहाना ताला का तस्करा इतने खूबसूरत अल्फाज में है कि वाकई दिल करता है कि बंदा उसका बंदा बन जाए। नबी के ऊपर तो फरिश्तों की तरफ से वही आती थी, इसलिए अब आगे अजमत इंसान का तस्करा है आयत 71 से 78 में, कि इतने बड़े रब के बंदे बन जाओ क्योंकि तुम बहुत ही कमज़ोर हो। तो हम आदम और इबलीस का किस्सा एक बार फिर हमारे सामने है, वही सबक है इसमें कि इबलीस तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए आयत 79 से 85 में इबलीस के नापाक अजायम का तस्करा, काल रब्बी फानजिर नीला योम योबसुन, और इस आयत का नंबर नोट कर लें आप, स्वात 79। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह शैतान की भी दुआ सुन लेता है अगर सुनना चाहे। और पीछे हमने पढ़ा था कि अम्बिया ने भी दुआएं की तो नहीं सुनी, तो अल्लाह के ऊपर किसी का जोर नहीं है। हमें ख़ुद को और अपनी औलादों को शैतान के इन नापाक अजायम से केयरफुल करवाना है। और अब सूरत फिर एंड की तरफ जाती है, तो कुरान और साहिबे कुरान की अज़मत का तज़किरा है 86 से 88 में, कुल मा सलुकुम अलैहि मिन अज्र, आप इनसे कह दें कि मैं आपसे इस काम पे कोई मुआवजा थोड़ी मांग रहा हूँ। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, और मैं तकल्लुफ़ करने वालों में से भी नहीं हूँ। हाँ नहीं है ये मगर एक नसीहत है जहानों के लिए, और तुम्हें एक वक्त के बाद जान लोगे। यानी आप देखिए कि जैसे वो किसी ठहरे हुए पानी में कंकर फेंके ना, तो गर्दाब उठते हैं, शोर उठता है, ذہنوں میں یہ سوال اٹھا کر صورت ختم کی جا رہی ہے کہ کبھی تو بیٹھ کے سوچو کہ اس شخص کو تم سے چاہیے کیا. اب دیکھیں کہ دنیاوی کاموں میں بہت آؤ ہوتا ہے نا, کب کہاں کتنے کا کتنا وقت, کتنے پیسے, کتنی چھٹیاں. اگر انبیاء کرام بھی اسی طرح کام کرتے تو بس میں دودھ سے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے. فطرت کا اصول لکھ لیجئے کہ دین کے کام کھلے ہاتھوں سے ہوتے ہیں. اگر کسی سے آپ اس کے پیسے مانگے تو کوئی دے گا؟ ہے ہی نہیں کسی کے پاس اتنا پیسہ جتنا اس کام والے کو دینا چاہیے. اور اس سے پھر بے نیازی بھی آتی ہے, بندہ مخلوق کا نہیں اللہ تعالیٰ کا نیاز مند بنتا ہے. تو بہرحال اس کے آگے اب کچھ آیات سورۃ زمر کی ہیں اس بارے میں جو کنٹینیو ہوگی آگے. 31 آیات ہے. زمر گروہوں کو کہتے ہیں, جنت اور جہنم میں جانے والوں کے گروہوں کا تذکرہ اس سورت کے اینڈ پہ آئے گا. آیت 1-4 میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف اشارہ ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یعنی کتاب کا نازل کرنا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے. یعنی یہ کتاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے, آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے. کرو کیا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ, بس اللہ کی بندگی کرو. مخلص اللہ الدین, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر آگے دین کی کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا کہ یہ جو مکہ والے تھے نا, جب ان کو منع کیا جاتا تھا کہ آپ بتوں کے آگے کیوں سجدہ کرتے ہیں, یا آج بھی کوئی کہے کہ فلاں قبر والے کو سجدہ کیوں کرتے ہیں, تو جواب تھا, نوٹ کرنا چاہیں تو آیت کا نمبر کر لیجئے, سورۃ زمر آیت 3, کیا کہتے تھے؟ اللہ لیقربنا الی اللہ زلفا, ما نعبدہم اللہ لیقربنا الی اللہ زلفا, ہم تو ان کے آگے اس لیے جھکتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. ذرا سے اس جملے پہ بعد میں غور کیجئے گا. آج امت مسلمہ کے کچھ لوگ بھی بڑے سے بڑے شرک کے مظہر کے بعد یہی جملے بولتے ہیں. اس لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کے کچھ اور مظاہر ہیں آیت 5-6 میں, جس میں خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کی بات ہے, رات اور دن کے ہیر پھیر, سورج اور چاند کے آنے, اور ایک وقت مقرر تک یہ دنیا کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے بعد پھر تمہیں واپس رب کے پاس جانا ہے. جانوروں سے دودھ لینے کی باتیں پھر بیچ میں آ گئیں, اور اسی طرح اندھیروں اور روشنیوں کی بات کر کے آگے آیت نمبر 7-8 میں شکر گزار سے اللہ راضی ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے. یعنی یہ پارا اینڈ پہ جا رہا ہے اور آپ اور مجھے میسج مل رہا ہے کیا, کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ گے نا تو تمہارا انجام بہت اچھا ہوگا. این یکفرو فإن اللہ غنی عنکم, تم کفر کرتے ہو, نہ شکری کرتے ہو, چھپاتے ہو اللہ کی نعمتوں کو, تو اللہ غنی ہے تم سے. اس کو اپنے بندوں سے کفر نہیں چاہیے, یعنی اللہ بے نیاز ہے. ساری دنیا بھی اس کا کفر کر دے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاوائن تشکرو, اگر تم شکر کر لو گے, یردہ لکم, بس تمہیں بھی خوش کر دے گا, اس کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے. ولا تزیرو وازرۃ وزر اخرا, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا بوجھ اٹھانے والا. اور پھر آگے علم کی فضیلت آیت 9 میں, امن ہوا قانتن, کیا وہ جو راتوں کو قنوت کرتا ہے, رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے, کبھی سجدوں میں ہوتا ہے, کبھی قیام میں ہوتا ہے, اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے, کیا یہ برابر ہے اس کے جو نہیں یہ کرتا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, آیت کا یہ ٹکڑا نوٹ کر لیجئے. علم والوں کی شان ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بے علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ. انما يتذكر اولو الالباب, اس لیے کہ علم والے اور بغیر علم والوں کا عمل فرق, سوچ فرق, کلیرٹی فرق, جینا مرنا فرق. آگے تقوی کے ثمرات ہیں آیت 10 میں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, کہہ دیجئے کہ وہ میرے بندے جو ایمان لائے ہیں, تقوی کرو, ڈر رکھو اپنے رب کا. کیا پتہ چلا کہ جتنا تقوی ہوگا اتنا انسان اللہ کے بھی قریب ہوگا, اور اس کے لیے وہاں حساب کے بغیر جنت بھی ہوگی. اور تقوی ہی اصل میں پھر صبر میں ڈھلتا ہے. پھر آگے آخر میں آیت 11-14 میں اللہ ہی کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, آپ نوٹ کریے گا, انبیاء کرام کی دعوت میں جب بھی قرآن میں ان کی بات ہوئی, اخلاص, توحید, अल्लाह को मानो, बस कोई फिकी बातें नहीं है कुरान में। आज पता नहीं क्यों लोग झगड़ते हैं कुरान पढ़ के भी, कुरान में तो यीशु है ही नहीं है, वो तो हदीस का मौजू होगा। असल कुरान का मैसेज क्या है कि इखलास पैदा करो, सवाल यह कि इखलास कैसे पैदा किया जाए। रात की इबादत से जब कोई देख नहीं रहा होता, किसको दिखाएंगे? अल्लाह को दिखाएंगे तो इखलास होगा, फिर दिल अल्लाह तआला की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होता है। और रात की इबादत रियाकारी से पाक अमल है। ये अलग बात है कि अब हम उसकी भी तस्वीरें खींच खींच के भेजें और लोगों को दिखाएं बताएं कि सारी रात क्याम में थी, मैं तो वहाँ जाती हूँ उधर जाती हूँ। कोशिश किया करें कि अपनी नफली इबादत को छुपाएं। फिर आगे घर वालों की तरबियत ना करने का इंजाम आयत 15 से 16 में है, और ये बहुत ही ज़्यादा हमें शऊर दिलाने वाली आयात है कि वो लोग जो कि जिनके अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम वाहलीहिम यौमल क़ियामा, कुछ लोग खुद भी नुकसान पाएंगे और अपने घर वालों को भी नुकसान दिलाएंगे, यानी कुछ लोग ऐसे होंगे। इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, असल बैंकरप्ट खसारे वाले वो हैं जो खुद भी बहके खुद भी खसारे में गए और घर वालों को भी किया। तो ज़रा से इंसान अपने बारे में सोचे, क्या मैं अपने घर वाले को या अपनी घर वाली को गलत कामों पे मजबूर तो नहीं करता या करती? तो इंशाल्लाह ये आयत समझ आएगी। आयत 17 से 21 में अच्छे और बुरे किरदार का तकाबुल है। कुछ वो हैं जो वल्लज़ीन अजतनबुत तागूत हैं, इज्तनाब करते हैं तागूत से कि उसकी इबादत करें, व अनाबू इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ मुनीब बनते हैं, रजू करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। फबशरे बात, मेरे बंदों को खुशखबरी दीजिए। ये कौन होते हैं? अल्लज़ीन यस्तमिउनल कौल, इसको हाईलाइट कर लें, गौर से बात को सुनते हैं, फिर उसमें जो सबसे अच्छी बात लगती है उसके ऊपर अमल करते हैं। ये हैं वो लोग के जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, और यही अक्लमंद है। अल्लाह हमें आपको इन्हीं लोगों में करे। और आगे फिर एक बुरा किरदार भी है। सब कुछ उसके पास था लेकिन खैर की बजाय शर लेकर लौटा। और आगे नूरे हिदायत पाने वाले आयत 22 में कौन है? अफमन शरहल्लाहु सद्रहुल इस्लाम, क्या वो जिसका सीना इस्लाम के लिए खुल गया, बस वो नूर पे है अपने रब की तरफ से। मुराद क्या है कि क्या वो बराबर हो सकता है उसके जिनका दिल सख्त हो गया? फवैलो लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फी दलाल मुबीन। तो यहाँ शरह सदर की कुछ बातें नोट कर लेते हैं। क्या होता है शरह सदर? जब इंसान शिर्क छोड़कर तौहीद पे आ जाता है तो उसका सीना खुल जाता है। अल्लाह मेरा आपका सीना खोल दे। जब इंसान जहालत को छोड़कर इल्म की तरफ आता है फिर भी शरह सदर हासिल होता है। जब गफलत को छोड़कर अल्लाह की तरफ रजू करता है फिर भी शरह सदर हासिल होता है। और अल्लाह के जिक्र पर दवाम इख्तियार करने से शरह सदर होता है। ये नहीं कि रमज़ान में आप बहुत नेक हो गए, जिक्र अजकार हैं, उम्रे पे गए तो अजकार हैं, बाद में आपने सब छोड़ दिया। फिर इसी तरह जब इंसान लोगों के साथ हुस्न सलूक करता है उससे भी शरह सदर होता है। और जब कोई इंसान बहादुरी से काम लेता है उस वक़्त भी शरह सदर होता है। और दिलों से कीना निकाल दें, सीना खुल जाएगा इंशाल्लाह। जगह ही नहीं है दिल में, नफरतें भरी हुई हैं, बुग़्ज़ है, वो नहीं अच्छा, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, निकालिए, दिल खाली कीजिए। आप देखिए मेहमान ने आना हो ना, तब उसका रूम सेट करते हैं, फालतू चीज़ें निकालते, अलमारियाँ खाली करते, कमरे को साफ करते। तो दिल के इस कमरे को अल्लाह की याद, अल्लाह की मोहब्बत के लिए खालिस करना है तो दिलों से गंदगी निकाले। और फिर इसी तरह जब इंसान फजूल कामों को छोड़ता है तो उसको शरह सदर मिलता है। और हम भी अपने लिए दुआ करेंगे कि रब बिशराहली सदरी। आगे अजमत कुरान का तस्करा है आयत 23 में, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह ने तो अहसन बात नाजिल कर दी। एक किताब है, आप देखिए कि मिलती जुलती आयतें हैं, बार बार भी पढ़ी जाती हैं। व तक शैर मिन जुलूदुल्लज़ीन यख्शौना रब्बहुम, गूस बाम होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस कुरान की आयतों को पढ़ के। सुम्मा तलीन जुलूदुम, फिर कभी नरम भी हो जाते हैं और उनके दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ है। क्या पता चला? कुरान एक रियल फ्लावर, असली फूल की तरह कभी खुशबू दे रहा है, कभी मुरझा रहा है, कभी उसका एक रंग आता है एक जाता है। तो बेस होके कुरान नहीं सुनना चाहिए कैसे जल्दी करो पारा पूरा कर दें, नहीं, आप अपने इमोशंस इसमें डालेंगे तो आपको ये एक जिंदा बात लगेगी। फिर गुमराहों का अंजाम आयत 24 से 26 में, कि एक ऑफ कोर्स जन्नत में जाएगा तो एक जहन्नुम में जाएगा। जो भटक गए हैं उनको अल्लाह ने उधर ही लेकर जाना है जिधर उनको जाने का शौक था। फिर कुरान की नेमत आयत 27 से 29 में क्या पता चला कि अल्लाह ने तो तुम्हें कुरान दे दिया है, अब तुम इसकी कितनी कदर करते हो इसको देख लो। और फिर तौहीद और शिर्क के फ़र्क की एक मिसाल देकर अल्लाह ताला ने मुखालफीन के साथ कशमकश आर्जी है ये पैगाम देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी आयत 30 से 31 में, इन्नक मैयतुन। अब महसूस करिए आखिरी आयतें पारे की, इन्नक मैयतुन, बेशक आप भी फौत होने वाले हैं, व इन्नहुम मैयतुन, और ये भी फौत होने वाले हैं, सुम्म इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर तुम क़यामत के दिन अपने रब के सामने झगड़े देख रहे होंगे, लोग झगड़े कर रहे होंगे, यानी ये जो मुखालफतें हैं ना ये ज़्यादा दिन नहीं रहनी। तो इन आयात पे गौर व फिक्र कीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।